पृष्ठ संख्या 56 भारतीय प्रेमाख्यान परंपरा और सूफी प्रेमाख्यानक काव्य। प्रेमाख्यान का अर्थ। प्रेमाख्यान का आख्यान शब्द मूलतः आख्यायिका का ही रूपांतर सा प्रतीत होता है और इसके ही अर्थ में कथा शब्द का भी प्रयोग होता है, परंतु आख्यायिका के लिए जहाँ कहा गया है कि वह केवल नायक द्वारा ही वर्णित गद्य के रूप में होती है, वहाँ कथा स्वयं नायक या किसी अन्य पात्र द्वारा भी कथित हो सकती है और साहित्य शास्त्र के पंडितों ने आख्यान आदि को इन दोनों के ही अंतर्भूत मान लिया है। दंडी काव्यादर्श 1:23:8 तथा विश्वनाथ साहित्य दर्पण 6 परिच्छेद पृष्ठ 325-26। फिर भी जैसा पुराण माख्यानम से प्रकट होता है, आख्यान शब्द का प्रयोग किसी समय पुराणों के लिए भी किया जाता था और उनके अंतर्गत पाई जाने वाली अंतःकथाओं को उपाख्यान की संज्ञा दे दी जाती थी। महाभारत को कदाचित इसी कारण कहीं कहीं भारताख्यान कहा गया मिलता है और उसकी कतिपय अंतःकथाओं को शकुंतलोपाख्यानम व नलोपाख्यानम आदि कहा गया है। आख्यानों का स्वरूप संभवतः वर्णनात्मक हुआ करता है और उनमें आई हुई कथा को इतिवृत्तात्मक रूप में दिया जाता है। उनके कथानकों का किसी रचयिता द्वारा कल्पित कर लिया जाना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वे साधारणतः लोक प्रचलित या ऐतिहासिक भी हो सकते हैं। इनमें मुख्य अंतर केवल इसी बात का रहता है कि प्रथम वर्ग वालों के पात्र कल्पना प्रसूत ही होते हैं तथा उनसे संबंधित घटनाओं के परिवर्तन एवं विकास में जहाँ कवि को किसी प्रकार के बंधन का अनुभव नहीं करना पड़ता, वहाँ दूसरे वर्ग वाली रचनाओं में ऐसी कम गुंजाइश रहा करती है। प्रेमाख्यानों में प्रधानतः किसी पुरुष का किसी स्त्री के प्रति या किसी स्त्री का किसी पुरुष के प्रति प्रेमासक्त होना दिखलाया जाता है। पंडित परशुराम चतुर्वेदी सूफी प्रेमाख्यानक साहित्य पृष्ठ 245-46 से उद्धृत। इस प्रकार की घटनाओं के मूल में प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन, गुण श्रवण अथवा किसी आभूषण आदि की प्राप्ति जैसी बातें हुआ करती हैं। इस प्रकार प्रेमाभिभूत होने पर प्रेमी व प्रेमिका अपने प्रेम पात्र को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उनके प्रेम में एकांत निष्ठा आ जाती है। वे अपने समक्ष के समस्त प्रत्यूहों, अंतरायों और विघ्न बाधाओं को तृणवत मानते हैं। जोगी बनना, विकट यात्राओं के लिए निकल पड़ना, सात सागरों को पार करना, युद्ध करना आदि में से कोई न कोई उनका धर्म हो जाता है। भारतीय प्रेम कथाओं का अंत बहुधा प्रेमी और प्रेम पात्री के बीच विवाह संबंध के घटित हो जाने पर ही अवलंबित रहता है और इसके संबंध में कर्म विपाक और पुनर्जन्म की कथाएं तक पृष्ठ संख्या 57 जोड़ दी जाती हैं। किंतु कभी कभी प्रेमाख्यानों का रूप दुखांत भी बन जाया करता है, जिनके अधिक उदाहरण ऐसी सूफी रचनाओं में ही मिलते हैं। सूफी प्रेमाख्यानों में और विशेषकर उनमें जिनके कथानक अभारतीय स्रोतों से लिए गए रहते हैं, ऐसे प्रेम संबंध की कहानी प्रचुर मात्रा में मिलती है जिसके लिए वैध या अवैध का कोई प्रश्न नहीं उठता और जहाँ प्रायः प्रत्येक कार्य पूर्ण स्वच्छंदता के साथ किया जाता है। परंतु भारतीय कथानकों में अधिकतर ऐसी नारियों का ही समावेश रहा करता है जो पातिव्रत धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक समझती हैं तथा जो पति के अभाव में प्रायः सती भी हो जाती हैं। पंडित परशुराम चतुर्वेदी भारतीय प्रेमाख्यानक की परंपरा पृष्ठ 1-3। पद्मावत और चित्ररेखा की कथाएं मूलतः भारतीय ही हैं। पद्मावत में तो महत् कार्य रानियों का सती होना ही है। चित्ररेखा में भी पति के अभाव में रानी चित्ररेखा चिता में जल मरने को प्रस्तुत है। वह कहती है कि हे प्रिय, जो तुमने मुझे भुला दिया है तो मैं भी अपने को जलाकर तुमसे मिलूंगी। जो तुम पियु हों ऐस बिसारी, आपो ही जारी मिलो तो नारी। चित्ररेखा पृष्ठ 106-107। भारतीय प्रेमाख्यान परंपरा। भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वस्तुतः प्रेम एक ऐसी सहज मानवीय प्रवृत्ति है जो मनु और श्रद्धा में भी विद्यमान थी। ऋग्वेद के दशम मंडल के 95 सूत्र में उर्वशी पुरुर्वस का प्रेमाख्यान आता है। इस प्रेमाख्यान के विषय में पेंजर ने लिखा है कि अभी तक ज्ञात हुई भारतीय प्रेम कहानियों में यह सर्वप्रथम प्रेम कहानी है। बहुत संभव है कि समस्त विश्व के प्रेमाख्यानों में भी यह प्राचीनतम समझी जा सके। N.M. पेंजर दी ओशन ऑफ स्टोरीज वॉल्यूम 2 पृष्ठ 245। इसी कथा का सूत्र रूप शतपथ ब्राह्मण में 1, 2, 14, 15 तथा 16 संख्या वाले मंत्रों में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई संवत 1996 पृष्ठ 119-27। इनमें पुरुर्वा उर्वशी संवाद दिया गया है। यही आख्यान विष्णु पुराण, विष्णु पुराण अंश 4 अध्याय 3 और महाभारत, महाभारत वन पर्व 46वां अध्याय में भी मिलता है। कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम नाटक में इसी आख्यान को अपना उपजीव्य बनाया है। ऋग्वेद के दशम मंडल में यम यमी संवाद भी प्रेमाख्यान मूलक है। श्यावाश्व और मनोरमा की प्रेम कथा भी ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद 5:61, अपाला वही 8:91 और कृशाश्व पृष्ठ संख्या 58, घोषा और अश्विनी कुमार ऋग्वेद 1:17-24, 117, शरण्यु वही 10:17-86, सौमरी वही 8:5, प्रगाथ वही 8:1 और कण्व, सुकन्या वही 1:116-17-18 और पुलोमा, वरुण, वशिष्ठ और श्वान आदि के आख्यान भी ऋग्वेद में मिलते हैं। वैदिक आख्यान देवता और मानवी, अप्सरा और मानव तथा ऋषि और राजकन्या के प्रेम से संबंधित हैं। उपनिषदों में अनेक छोटी बड़ी प्रेम कथाएं मिलती हैं। याज्ञवल्क्य और गार्गी, सत्यकाम और जाबाली, अहिल्या और इंद्र प्रभृति अनेक सुमधुर कथा प्रसंगों से उपनिषदों के ज्ञान भंडार को मनोमय बनाया गया है। रामायण और महाभारत तो कथाओं के अक्षय भंडार ही बन गए हैं। महाभारत के संभव पर्व में अर्जुन, सुभद्रा, दुष्यंत, शकुंतला, भीम, हिडिंबा आदि के प्रेमाख्यान मिलते हैं। पूर्वा उर्वशी की प्रेम कथा अनेक, द्रष्टव्य विष्णु पुराण अंश 4 अध्याय 6 पृष्ठ 7-8, श्रीमद् भागवत स्कंद 9 अध्याय 14, वायु पुराण अध्याय 91, ब्रह्म पुराण अध्याय 10-101, विष्णु धर्मोत्तर प्रथम खंड 130-6 आदि पुराणों में मिलती है। कहानियों का एक वृहत और प्राचीन संग्रह गुणाढ्यकृत वृहत कथा है। इसे उस समय में प्रचलित कहानियों का कोष कहा जाता है। ए बी कीथ, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, 1923। आज यह अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, तथापि क्षेमेंद्र, सोमदेव प्रभृति कवियों द्वारा वृहत कथा मंजरी और कथा सहित सागर के नाम से संस्कृत साहित्य में रूपांतरित होकर सुरक्षित रह सका है। विक्रमीय शताब्दी के पूर्व संस्कृत में कुछ ऐसी कथाएं लिखी जा चुकी थी जिनका पता महाभाष्यकार को था। अधिकृत कृत्य ग्रंथ सूत्र की व्याख्या में भैमरथि, सुमनोत्तरा और वासव दत्ता की प्रेम कथाओं का उल्लेख पतंजलि ने किया है। सुबंधु की वासव दत्ता की ही भांति पतंजलि द्वारा उल्लेखित वासव दत्ता भी रही होगी। परवर्ती संस्कृत कथा साहित्य के अंतर्गत वृहत कथा श्लोक संग्रह, कथा सहित सागर, वैताल पंचविंशतिका, शुक सप्तशती, विहास सिंहासन द्वात्रिंशतिका, पंचतंत्र, हितोपदेश, कादंबरी, वासव दत्ता, दशकुमार चरित प्रभृति ग्रंथों का भारतीय साहित्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कथा सहित सागर के प्रेमाख्यानों में उर्वशी, पुरुर्वा, अहिल्या, इंद्र, सीताराम, वासव दत्ता, उदयन जैसी प्रेम कहानियों के साथ ही पृष्ठ संख्या 59 अनेक दंत कथाएं भी दी गई हैं। कथा सहित सागर में केवल उच्च कुलीनों की ही प्रेम कथाएं नहीं है, वरन ऐसे प्रेमाख्यान भी हैं जिनमें विरोचित कार्यों या अद्भुत कार्यों से प्रसन्न हो मछुए या चांडाल के प्रति भी कुलीनाएं अनुरक्त हो जाती हैं। दी ओशन ऑफ द स्टोरी वॉल्यूम 8 पृष्ठ 112, 114, 115। भारतीय प्रेमाख्यानों की धारा वेद काल से ही अविच्छिन्न रूप में मिलती चली आई है। इसका प्राचीन रूप वेद, उपनिषद, पुराण और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। प्राकृत अपभ्रंश में भी प्रेमाख्यानों का विशाल भंडार मिलता है। हिंदी के आख्यानों तथा सूफी प्रेमाख्यानों को इसी परंपरा की अविच्छिन्न कड़ी कहा गया है। इनके विकास का मूल स्रोत अपभ्रंश के चरित काव्यों की परंपरा में भी निहित माना गया है। बाणभट्ट की कादंबरी जन्मांतर में चलने वाले प्रेम की चमत्कार पूर्ण गाथा है। कालिदास कृत में एक दूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीय प्रेमाख्यानों के ज्वलंत उदाहरण हैं। वृहत कथा, वैताल, पंचविंशति, पंचतंत्र आदि भी आख्यानों के अक्षय भंडार हैं। पौराणिक प्रेमाख्यानों में प्राप्त पुरुर्वा उर्वशी के अतिरिक्त नल, दमयंती, दुष्यंत, शकुंतला, उषा, अनिरुद्ध, द्रष्टव्य, ब्रह्म वैवर्त 114-20, विष्णु पुराण 5:32-33, शिव पुराण 5:51-4, ब्रह्म पुराण 20:5-6, अग्निपुराण 1-2, श्रीमद् भागवत 10:62-63, महाभारत सभा पर्व 38-29 के पश्चात दाक्षिणात्य पाठ पृष्ठ 821-24, श्री कृष्ण रुक्मिणी, प्रद्युम्न मायावती, अर्जुन सुभद्रा, चित्रांगदा उलूपी, भीम हिडिंबा प्रभृति कथाओं ने परवर्ती साहित्य को बहुत प्रभावित किया है। स्वयंवर और सुंदरी हरण इन कथाओं में प्रायः मिलते हैं। पृथ्वीराज रासों में इस पौराणिकता की छाप द्रष्टव्य है। जातक कथाएं ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से भी पहले से लेकर ईसा के बाद की प्रथम या द्वितीय शताब्दी तक ही रची गई होंगी। जातक प्रथम भूमिका पृष्ठ 24। जातकों की संख्या 550 बतलाई जाती है। भरत सिंह उपाध्याय पाली साहित्य का इतिहास पृष्ठ 274। कठहारी जातक की कथा शकुंतला दुष्यंत की कथा के समान है। राजा ब्रह्मदत्त का एक लकड़हारिन से प्रेम, स्मृति चिन्ह रूप में अंगूठी देना, बालक का जन्म, राजा का उसे न पहचानना, बाद में स्वीकार करना और लकड़हारिन के बेटे का राजा काष्ठवाहन होना। मणिचोर जातक वही पृष्ठ 285-88, पृष्ठ संख्या 60। अंडभूत जातक, जातक कथा प्रथम खंड पृष्ठ 376। असी लक्षण जातक वही द्वितीय खंड पृष्ठ 64। आशंक जातक वही तृतीय खंड पृष्ठ 49। दशेणक जातक वही चतुर्थ खंड पृष्ठ 187, संयुग्य जातक वही पृष्ठ 187, महा पदुम जातक वही पृष्ठ 387 प्रभृति कथाओं में प्रेमाख्यान के अंश मिलते हैं, पर इनमें प्रेमाख्यान के अंश गौण हैं, उपदेशांश प्रमुख हैं। थेरी गाथा के अंतर्गत 522 पदों में 73 बौद्ध भिक्षुणियों की आत्माभिव्यक्ति संग्रहित है। इनमें शुभा, मुद्रा, कुंडल केशा, श्यामावती, सुजाता, मल्लिका, अम्बपाली, गौतमी आदि के प्रेम की कथाएं हैं। अवदान की कथाओं में भी कई प्रेमाख्यान मिलते हैं। शार्दूल कर्णावदान में महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद और एक चांडाल कन्या के प्रेम और विवाह की कथा है। दिव्यावदान में कुणाल और उनकी विमाता की करुण गाथा वर्णित है। जातक, थेरी गाथा, अवदान आदि की प्रेम कथाओं की अनेक कथानक रूढ़ियाँ, यथा नायक का फूलों की टोकरी में छिपकर नायिका के महल में जाना, सौतेली माँ आदि हिंदी प्रेमाख्यानों में भी प्रयुक्त हैं। जैन कवियों ने अपनी धर्म कथाओं में श्रृंगार रस से पूर्ण प्रेम कथाओं को समाविष्ट करके उन्हें मनोरंजक और लोकोपयोगी बनाया है। काम कहारत हितयस्य जनस्य श्रृंगार कहावसेन धम्मम चैव परिकहेमि। वसुदेव हिंडी भाग 2। कुवलय माला ज्ञान पंचमी कहा सुर सुंदरी चरित कुमार पाल चरित ने प्रेम की कई कथाएं मिलती हैं। सुंदरी देवी की कथा प्राकृत का एक सुंदर प्रेमाख्यान कहा जाता है। रयण सेहरी कहा वियोग संयोग श्रृंगार का एक सरस प्रेमाख्यान है। रत्न शेखर का सिंघल दीप जाना, वहां की राजकुमारी रत्नवती से कामदेव मंदिर में मिलना, अंत में विवाह आदि इसके कथा तंतुओं का प्रभाव हिंदी प्रेमाख्यानों में मिल जाता है। तरंग वही कहा, लीला वही कहा, मलय सुंदरी कहा, जिन दत्ताख्यान, सुर सुंदरी चरियम, आख्यान मणिकोश, कहा रयण कोश, प्राकृत कथा संग्रह, समराइच कहा, नर्मदा सुंदरी कथा, अजना सुंदरी चरिय प्रभृति कथाओं में अनेक सुंदर प्रेमाख्यान मिलते हैं। अपभ्रंश भाषा की रचनाएं विक्रमोर्वशीयम, द्रष्टव्य विक्रमोर्वशीयम, हिंदी अनुवाद शिव सहाय पाठक 1958 इसी चतुर्थ अंक से ही प्राप्त होने लगती है। पृष्ठ संख्या 61। अपभ्रंश भाषा के तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी तक के प्रमाण मिले हैं। तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी से लेकर 17वीं शताब्दी के अपभ्रंश साहित्य की परंपरा प्रवाहमान रही है। अपभ्रंश में पौराणिक और रोमांचक शैलियों में लिखे गए अनेक काव्य मिलते हैं। इन दोनों शैलियों में रचित ग्रंथों को चरित काव्य की संज्ञा दी गई है। यूं स्वरूप और संगठन की दृष्टि से पौराणिक और रोमांचक चरित काव्यों में बहुत अंतर नहीं है। धाहिल पौम श्री चरियूस संपादक हरिवल्लभ चुनीलाल भायाणी भूमिका पृष्ठ 15 संवत 2005। इस साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि भारतीय साहित्य का कोई भी अंग इससे अछूता नहीं रहा है। अपभ्रंश के चरित काव्य प्रेमाख्यानक ढंग के हैं। अपभ्रंश के सिद्ध साहित्य में कण्हप्पा सरहप्पा आदि की रहस्यमय अनुभूतियों की बड़ी चर्चा है। सिद्ध साहित्य में गुरु महिमा रूढ़ी खंडन जाति भेद पर प्रहार सहज क्षण की महिमा का बखान आदि के साथ डोमिन ब्राह्मणी आदि का गुह्य साधना के प्रतीक रूप में प्रयोग हुआ है। तंत्र मंत्र भैरवी चक्र शरीर के षट चक्र और कुंडलिनी साधना की बातें भी इस साहित्य में मिलती हैं। निर्गुण संतों की वाणी में गुह्य और रहस्य साधना में कृष्णोपासक और रामोपासक कवियों की भक्ति में प्रेम मार्गी सूफी संतों की प्रेम पीर में और शुद्ध ऐहिक आख्यानों में मिलने वाले कामोत्तेजनापूर्ण अनावृत श्रृंगार वर्णन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इसी साहित्य की अनुगूंज है। हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा ने इससे भी प्रभाव ग्रहण करके अपने को केवल श्रृंगार वर्णन तक ही सीमित नहीं रखा, वरन हठ योग जैसी भारतीय और सूफियों की अन्योक्ति परक परंपराओं को भी अपनाकर विविधता और अनेक रूपता प्रदान की। डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव भारतीय प्रेमाख्यान पृष्ठ 18। जो इंदुकृत परमात्म प्रकाश और योग सार 6 शताब्दी ईस्वी मुनि राम सिंह कृत पाहुर दोहा और हेमचंद्र के व्याकरण में अपभ्रंश के उदाहरित दोहे बड़े महत्वपूर्ण हैं। सिद्ध हेम में उदाहरण रूप में आए हुए दोहों में नारी की दर्पोक्ति सुललित श्रृंगार मूलक अभिव्यक्ति के साथ ही मूंज मृणालवती कृष्ण राधा से संबद्ध दोहे भी मिलते हैं। निश्चय ही ये दोहे किसी प्रचलित कथा के अंश हैं। अद्दह माणकृत संदेश रासक एक विरह काव्य है। विरह निवेदन के अंतराल में षड ऋतु वर्णन और विरहिणी के भावों का अत्यंत मार्मिक किंतु सहज चित्रण इस काव्य की विशेषता है। कुमार पाल प्रतिबोध 1241 विक्रम में नल प्रद्योत तारा और रुक्मिणी के प्रेमाख्यान मिलते हैं। ज्ञान शिखा लखनऊ विश्वविद्यालय अक्टूबर 1951 ईस्वी पृष्ठ 81 डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी का लेख। अपभ्रंश चरित काव्यों पृष्ठ संख्या 62 को प्रेमाख्यानों के ढंग का काव्य माना जा सकता है। पौम चरियु जसहर चरियु नाय कुमार चरियु करकंडुचर्यु सनत कुमारचर्यु सुपामण हंचचर्यु नेमी नाहचर्यु भविय भविष्यतकहा महापुराण हरिवंश पुराण सुंदर्शनचर्यु विलासवयिकहा जीर्णदत्तचर्यु श्रीपालचर्यु पौमसिरीचर्यु सनत कुमारचर्यु प्रभृति काव्यों में प्राय सब में एक प्रेम कथा तो अवश्य ही है। इनमें प्राय प्रेम का प्रारंभ रूप गुण श्रवण चित्र दर्शन स्वप्न दर्शन आदि में से किसी एक के द्वारा होता है। नायक को नायिका की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना पड़ता है। दोनों का विवाह भी होता है। करकंडुचर्यु के नायक को सिंघल की यात्रा करनी पड़ती है। जैनाचार्यों ने अपनी कथाओं में उपदेश और धर्म तत्वों को मिलाकर प्रेम कथा को धर्म कथा बनाने का प्रयत्न किया है। प्रति नायक आश्चर्य तत्व गंधर्व मुनि राक्षस आदि मंगलाचरण देश नगर प्रासाद उद्यान वन प्रातः संध्या आदि के वर्णन कड़वकात्मक छंद योजना अध्याय या संधि आदि के साथ ही काव्य गुण अलंकार आदि इनमें मिल जाते हैं। स्वयंभू का रामायण पौमचर्यु लगभग 90 संधियों का एक वृहद प्रकथन प्रधान महाकाव्य या पुराण काव्य है। इसमें आदर्श चरित्र की स्थापना स्वयंभू का लक्ष्य रहा है। स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन इसमें अत्यंत जीवंत रूप में किया गया है। राम सीता की कथा में अलौकिकता के संकेत भी यत्र तत्र द्रष्टव्य हैं। अपभ्रंश के इन काव्यों का महत्व छंद विधान कथा संगठन अलंकृति आदि की दृष्टियों से भी है, क्योंकि परवर्ती हिंदी आख्यानक काव्यों में इन्हीं चरित काव्यों की परंपरा को बहुलांश में गृहित किया गया है। कथानक रूढ़ियों के प्रयोग और लौकिक कथाओं में अलौकिकता विधायक तत्वों का समावेश भी इन काव्यों में प्रभुत परिमाण में मिलता है और हिंदू मुसलमान प्रेमाख्यान लेखकों की कथाओं पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ा है। हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यान संदेश रासक हमीर रासो और बीसल देव रासो मूलतः प्रेमाख्यान ही हैं। प्रोषित पतिका का संदेश विरह निवेदन षड ऋतु वर्णन प्रभृति तत्व इन काव्यों में मुख्य हैं। मध्य युग की हिंदू प्रेमाख्यानों की यह परंपरा संवत 1000 ढोला मारूरा दुहा से प्रारंभ होकर संवत 1912 प्रेम पयोनिधि तक चलती हुई मिलती है। हिंदी साहित्य में सूफी कवियों के समानांतर हिंदू कवियों की प्रेमाख्यान धारा भी सतत प्रवाहित होती रही है। जिस प्रकार मुसलमान कवियों का कथा साहित्य पौराणिक काल्पनिक लोक प्रचलित तथा ऐतिहासिक कथाओं पर अवलंबित मिलता है, उसी प्रकार हिंदुओं ने भी जायसी के पूर्व और उनके पश्चात आख्यानक काव्यों का विपुल साहित्य निर्मित किया है। नल दमयंती की कथा रुक्मिणी मंगल नल दमन नल चरित्र नल दमयंती चरित्र उषा की कथा पृष्ठ संख्या 63 बेली कृष्ण रुक्मिणी गिरी आदि हिंदुओं के द्वारा रचित पौराणिक प्रेमाख्यान भी मिलते हैं। लोक प्रचलित और कल्पना प्रसूत कहानियों में प्रेम विलास प्रेम लता कथा ढोला मारूरा दूहा काम रूप चंद्रकला की कहानी रमण साह छबीली भटियारी की कथा कामरूप की कथा मृगावती की कथा राजा चित्र मुकुट की कथा मधुमालती चंदन मलय गिरी वार्ता बात सयाणी चारणिणी आदि आती हैं। ऐतिहासिक कहानियों में माधवानल काम कंदला और रूप मंजरी भी रखी जा सकती हैं। इन भारतीय प्रेमाख्यानों को डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव द्रष्टव्य भारतीय प्रेमाख्यानक काव्य डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव ने 3 भागों शूद्र प्रेमाख्यान आन्यापदेशिक काव्य और नीति प्रधान प्रेमाख्यान में विभाजित किया है। इनमें से प्राप्य ग्रंथों की सूची इस प्रकार है। शुद्ध प्रेमाख्यान ग्रंथ नाम कवि रचनाकाल 1 ढोला मारू रा दूहा। इसके मूल कवि का नाम ज्ञात नहीं है। कुशल लाभ नामक कवि ने जैसलमेर के रावल की आज्ञा से चौपाइयां जोड़कर इसे ठीक ठाक किया है। इसे एक विकसनशील काव्य कहा जा सकता है। इसका रचना काल संवत 1000 से 1618 विक्रम तक माना गया है। 2 बेली कृष्ण रुक्मिणी री महाराज पृथ्वीराज रचना काल संवत 1647 प्रकाशित। 3 रस रतन पुहकर संवत 1675 नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित नागरी प्रचारणी सभा। 4 छिताई वार्ता नारायण दास रचना काल के विषय में मतभेद है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसे जायसी के बहुत पहले की कृति मानते हैं। 5 माधवा नल काम कंदला विरह वारिश बोधाकृत संवत 1809 से 1815 विक्रम के मध्य प्रकाशित। 6 माधवा नल काम कंदला गणपति। 7 माधवा नल काम कंदला दामोदर संवत 1737 प्रकाशित। 8 माधवा नल काम कंदला राजकवि केस नाटक संवत 1717 अप्रकाशित। 9 माधवा नल काम कंदला संस्कृत और हिंदी मिश्रित। 10 बीसल देवरासो नरपति नाल संवत 1212 प्रकाशित। 11 प्रेम विलास प्रेम लता कथा जटमल नाहर अप्रकाशित। 12 चंद्र कुंवरी री बात हंस संवत 1740 प्रकाशित। पृष्ठ संख्या 64। 12 राजा चित्र मुकुट रानी चंद्र किरण की कथा अप्रकाशित। 14 उषा की कथा रामदास संवत 1894 अप्रकाशित। 15 उषा चरित मुरलीदास संवत 1818 अप्रकाशित। 16 उषा हरण जीवन लाल नागर संवत 1886 प्रकाशित। 17 उषा चरित जन कुंज संवत 1831 अप्रकाशित। 18 रमण शाह छबीली भटियारी की कथा अज्ञात संवत 1905 के पूर्व प्रकाशित। 19 बात सयाणी चारेणी री 20 नल दमयंती कथा 21 प्रेम पयोनिधि मृगेंद्र संवत 1912 अप्रकाशित। 22 रुक्मणि परिणय महाराज रघुराज सिंह जूदेव संवत 1907 अप्रकाशित। आन्यापदेशिक प्रेमाख्यान 23 पुहपावती संवत 1726 अप्रकाशित। 24 नल चरित्र मुकुंद सिंह संवत 1798 अप्रकाशित। 25 नल दमन सूरदास संवत 1714 अप्रकाशित। 26 नल दमयंती चरित सेवाराम संवत 1853 अप्रकाशित। 27 लैला मजनू सेवाराम रामजी सहायक कृत अज्ञात अप्रकाशित। 28 रूप मंजरी नंददास संवत 1625 प्रकाशित। नीति प्रधान प्रेम काव्य 29 मधुमालती चतुर्भुज दास कायस्थ संवत 1837 अप्रकाशित। 30 माधवा नल काम कंदला चौपाई कुशल लाभ संवत 1613 प्रकाशित। 31 सत्यवती की कथा ईश्वरदास संवत 1558 प्रकाशित। 32 माधवा नल आख्यानम आनंदधर रचनाकाल अज्ञात प्रकाशित। 33 माधवा नल काम कंदला आलम संवत 1640 अप्रकाशित। इस सूची में कतिपय प्रमुख प्रेमाख्यानों का उल्लेख है। संप्रति शोध के आलोक में राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार आदि से ऐसे और भी प्रेमाख्यानों का पता चला है। राजस्थान से प्राप्त कई प्रेमाख्यानों का प्रकाशन भी हो चुका है। आलम का माधवा नल काम कंदला और श्याम स्नेही गुलाम मोहम्मद का प्रेम रसाल सुंदर कली की कहानी दुली कुतुब शाह की कुतुब मुश्तरी पृष्ठ संख्या 65 नुसरती का गुलशन इश्क इब्न निशाती का फूलबन निसार का यूसुफ जुलेखा गवासी का किस्सा सैफुल मुलुक वदी उल जमाल फाजिल शाह का प्रेम रतन तथा रज्जन का राजन या प्रेम बान ज्योत निरंजन मुल्ला गाजी बख्श का उषा चरित आदि कितने स्वतंत्र आख्यानक काव्य भी मिलते हैं। इनके अतिरिक्त अकेले जान कवि ने रत्नावली लैला मजनू नल दमयंती पुहप बरिखा कनकावती छवि सागर मोहनी खिजर खां व देवल दे की कहानी कामलता रूप मंजरी छीता कनकावती मधुकर मालती आदि अनेक प्रेम कथाएं लिखी हैं। इनमें कुछ सूफी ढंग की हैं और कुछ शुद्ध प्रेमाख्यानक हैं। डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव भारतीय प्रेमाख्यान परंपरा पृष्ठ 30 जायसी द्वारा प्रेमाख्यानों का उल्लेख। जायसी ने पद्मावत में कतिपय प्रेम कथाओं की ओर संकेत किया है। बहुतन ऐस जीव पर खेला तू जोगी के ही माह अकेला विक्रम धसा प्रेम के बारा सपनावती कह गयो पतारा सुदैवच्छ मुगुधावती लागी कंकन पूरी होइगा बैरागी राजकुंवर कंचनपुर गयो मिर्गावती कह जोगी भयो साधा कुंवर मनोहर जोगु मधुमालती कह की नबियोगु प्रेमावती कह सुरसुर साधा ऊखा लागी अनिरुद्ध बर बांधा। जैसी ग्रंथावली डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त पृष्ठ 276-233 छंद। इन पंक्तियों के साक्ष्य पर स्पष्ट है कि पद्मावत की रचना के समय तक ये इन पंक्तियों में कथित कहानियां किसी न किसी रूप में अवश्य प्रचलित थीं। पंडित रामचंद्र शुक्ल जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ 4 सत्य जीवन वर्मा नागरी प्रचारणी पत्रिका भाग 6 पृष्ठ 294 डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृष्ठ 307 हरियोध हिंदी भाषा और साहित्य का विकास पृष्ठ 161 प्रवृत्ति विद्वानों का विचार है कि जायसी द्वारा दी गई वह सूची जायसी के पूर्व लिखे जा चुके प्रेमाख्यानों की है। इन विद्वानों की बात इसलिए मान्य है कि धीरे धीरे शोध में यह ग्रंथ मिलते जा रहे हैं। ए जी शरीफ पद्मावती पृष्ठ 9 का अनुमान है कि जायसी ने प्रेमाख्यानों की जो नामावली दी है वो प्रेमाख्यानों की न होकर लोक प्रचलित प्रेम कहानियों की है। जिनके स्वरूप के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि ये कहानियां लिखित हों ही। पृष्ठ संख्या 66। संभव है कि ये मात्र मौखिक परंपरा से चली आती हों। इस सूची पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि विक्रमादित्य और उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथाओं को छोड़ देने से चार प्रेम कहानियां जायसी के पूर्व लिखी हुई पाई जाती हैं। इनमें से मृगावती के खंडित प्रति का पता तो नागरी प्रचारणी सभा को लग चुका है। मधुमालती की भी फारसी अक्षरों में लिखी हुई एक प्रति मैंने किसी सज्जन के पास देखी थी, पर किसके पास से यह स्मरण नहीं। चतुर्भुज दासकृत मधुमालती री कहा नागरी प्रचारणी सभा को मिली है, जिसका निर्माण काल ज्ञात नहीं और जो अत्यंत भ्रष्ट गद्य में है। मुग्धावती और प्रेमावती का अभी तक पता नहीं चला। पंडित रामचंद्र शुक्ल जायसी ग्रंथावली पृष्ठ 4। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ का कथन है कि मधुमालती री कहा की फोटो कॉपी सभा में है और गद्य में नहीं अपितु पद्य में है। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य पृष्ठ 28, टिप्पणी नागरी प्रचारणी सभा खोज रिपोर्ट 1902 नोटिस 44। मधुमालती की दो प्रतियां भारतीय विद्या भवन के श्री हरिवल्लभ भायाणी जी को मिली हैं। इनमें 750 से ऊपर छंद हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का कथन है कि विक्रमादित्य और स्वप्नावती सिंहासन 32 में पांचवी पुतली लीलावती की कथा है कि विक्रम ने सिंहासन की प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट भोगा। उसी का पाठ यहाँ स्वप्नावती पाठांतर चंपावती मिलता है 652-9। श्री अगरचंद नाहटा को स्वप्नावती की कहानी लोक साहित्य में मिल गई है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत पृष्ठ 223-24। सुदैवच्छ मुग्धावती की कहानी अत्यंत लोकप्रिय थी। संदेश रासक में इसका उल्लेख आया है। कह वह ठाई चौवेही वेउ पयासी अई, कह बहुरूवी ऋणबद्धु रास उभासी अई, कह वह ठाई सुदैवच्छ कथवर चरियु, कथव विविह विणोई भारहु उच्चरियु। संदेश रासक संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी पृष्ठ 12 43-44 पद्य। संदेश रासक की इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि कहीं पर चारों वेदों के ज्ञाता वेदों की व्याख्या करते हैं, कहीं विविध रूपों से निबद्ध रासक पढ़े जाते हैं, कहीं सुदैवच्छ कहीं नलचरियु और कहीं विविध विनोदपूर्ण महाभारत की कथाएं पढ़ी जाती हैं। यहाँ पर यह दृष्टव्य है कि सुदैवच्छ की कथा का उल्लेख वेद नलचरियु और महाभारत के साथ किया गया है। सुदैवच्छ और रानी सावलिंगा की कहानी आज भी बिहार से गुजरात तक गांव-गांव में कही जाती है। सुदैवच्छ सावलिंगा की कहानी के लिए देखिए पृष्ठ संख्या 67। अगरचंद नाहटा का लेख राजस्थान भारती अप्रैल 1950। मनोहर और मधुमालती। देखिए मधुमालती पर ब्रजरत्न दास का लेख हिंदुस्तानी पत्रिका अप्रैल 1938 पृष्ठ 212। नागरी प्रचारणी पत्रिका मंजनकृत मधुमालती पंडित चंद्रबली पांडे 1995 पृष्ठ 255-66। नागरी प्रचारणी पत्रिका हीरक जयंती अंक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का लेख वर्ष 58 संवत 2010। मंजनकृत मधुमालती नामक अवधि प्रेम कहानी की अनेक हस्तलिखित प्रतियां मिली हैं। कई हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर श्री शिव गोपाल मिश्र ने मंजनकृत मधुमालती का संपादन किया है। मंजनकृत मधुमालती डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र हिंदी प्रचार पुस्तकालय काशी 1957। कवि बनारसी दास ने लिखा है कि वे मधुमालती और मृगावती की पोथियां रात्रि के समय जौनपुर में बांचा करते थे। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि 1641 में ये पोथियां विद्यमान थीं। तब घर में बैठे रहें जा ही न हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोई उदार, ते बाचही रजनी समय आवही नर 10-20, गावही अरु बाते करही नित उठ देही आशीष। अर्ध कथानक संपादक पंडित नाथुराम प्रेमी पृष्ठ 58 335 1957। बनारसी दास इन पोथियों को लगभग 1605 संवत 1662 में पढ़ा। वही पृष्ठ 29 अब 1667 कार्तिक हुवो कालो 257 करते थे और पद्मावत 1540 संपादक 1507 में लिखा गया था। जयसी और बनारसी दास के उल्लेखों से स्पष्ट है कि ये मात्र मौखिक कहानियां ही नहीं थी, पुस्तक रूप में भी थी। मधुमालती की कथा का उल्लेख उस्मान के चित्रावली में भी मिलता है। मधुमालती होई रूप देखावा, प्रेम मनोहर होई तह आवा, मृगावती मुख रूप बसेरा, राजकुमार भयो प्रेम अहेरा, सिंघल पदुमावती मोरूपा, प्रेम की ओ है चितोर भूपा। चित्रावली उस्मान 30-5-7। इन साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये प्रेम काव्य है। इनमें से कुछ तो प्राप्त हो गए हैं और सरसुर प्रेमावती की कहानी पद्मावत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पृष्ठ 223-24 प्रभृति प्रेम कथाएं अभी तक अज्ञात हैं। यह अभी भी ज्ञातव्य है कि ये प्राप्त अप्राप्त कथाएं सूफी प्रेमाख्यानों की परंपरा में हैं या असूफी भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा में। पृष्ठ संख्या 68, सूफी प्रेमाख्यानों का महत्व एवं उनका हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में सूफी प्रेमाख्यानों की रचना का आरंभ उस समय हुआ जब हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल प्रायः बीत चुका था और वीर गाथा के नाम से अभिहित किए जाने वाले रासो साहित्य का आदर्श बहुत कुछ फीका सा पड़ने लगा था। उस काल की रचनाओं में जिस प्रेम पद्धति का वर्णन अधिक विस्तार के साथ मिलता था वह उन राजाओं का वासनात्मक प्रेम था जो किसी सुंदरी को अपने लिए केवल एक भोग्य वस्तु समझा करते थे और जो उसे उसके माता पिता के यहाँ से अपहरण करके अथवा युद्ध में जीत कर लाने का प्रयत्न करते थे। उनके यहाँ अपनी पत्नियां भी रहा करती थी जिनसे उनके दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह भली भांति हो सकता था किंतु अधिक सुंदरियों की उपलब्धि उनके लिए गौरव की बात भी थी। पंडित परशुराम चतुर्वेदी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हिंदी साहित्य पृष्ठ 294-95। सुंदरियों के लिए युद्ध होते थे, कन्या हरण भी राजाओं के लिए सामान्य बात थी और ऐसे अवसरों पर वे राजा या सामंत अपने शौर्य का भी परिचय देते थे। उन रानियों की प्राप्ति से उनकी कीर्ति कौमुदी दिगंत व्यापिनी तो होती ही थी, उनके महलों की भी शोभा वर्धित होती थी। डिंगल साहित्य के बाद हिंदी कविता का जो प्रवाह मध्य देश में हुआ उसमें ब्रजभाषा और अवधी का विशेष हाथ रहा। यूं तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और फारसी चारों पर अपने प्रतिभा का प्रकाश डाला था, पर वह रचना प्रयोगात्मक थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी को साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का सफल प्रयत्न किया। जायसी के बाद तुलसीदास ने तो अवधि को मानस के आदर्श कोमल कलेवर में अमर कर दिया। भाषा की स्वाभाविकता, सरसता, मनोगत भावों की प्रकाशन सामग्री के रूप में जायसी ने अवधि को साहित्य क्षेत्र में मान्य बना दिया। इस अवधि प्रयोग के साथ जायसी ने हिंदी छंदों का भी सरस प्रयोग किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ 316। 13वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्ववर्ती अपभ्रंश के चरित काव्यों में भी एक विशिष्ट प्रकार की प्रेम पद्धति के दर्शन होते हैं। इसके अंतर्गत नायिकाओं की दरपोक्तियां और वीरों की विरोक्तियां महत्वपूर्ण रही हैं। नायिकाओं का राजकुमारी न होना और प्रेमी नायक की सर्वसाधारणता इस साहित्य की विशेषता है। लोक गाथाओं में तो प्रेमी और प्रेमिका उच्च सामाजिक स्तरों के होते हुए भी सर्वसाधारण की स्थिति में आ जाते दिखलाए जाते थे। प्रारंभिक सूफी प्रेमाख्यानों पर कदाचित इन सभी बातों का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा होगा। पृष्ठ संख्या 69 और उनके रचयिताओं ने उस समय की उपलब्ध पृष्ठभूमि पर उनका निर्माण कार्य संपन्न कर उसके द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति का भरसक प्रयत्न भी किया होगा। पंडित परशुराम चतुर्वेदी सूफी प्रेमाख्यानक साहित्य हिंदी साहित्य पृष्ठ 295। अभी तक प्राप्त हुए प्रेमाख्यानों में प्रथम चंदायन में लोरिक के व्यक्तित्व में प्रेमाभिभूत साधारण व्यक्तित्व एवं शौर्य पराक्रम से मंडित गरिमामय व्यक्तित्व दोनों का सुंदर समावेश है। पूर्ववर्ती काव्यों के समान ही इसमें प्रेम और शौर्य वर्ण विषय है किंतु वर्णन शैली का पार्थक्य भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति का प्रवाह सर्व प्रमुख है। इस युग की प्रायः सभी रचनाएं भक्ति रस से आप्लावित हैं। भक्ति का भाव वस्तुतः प्रेम के ही व्यापक रूप का एक अंग मात्र है और वह इसके साथ केवल श्रद्धा का संयोग हो जाने पर किसी हृदय में उदय होता है। सूफी मत का प्रेम भी मूलतः परमात्मा के प्रति उद्दिष्ट समझा जाता था जिस कारण उसे भक्ति भाव से भिन्न नहीं ठहराया जा सकता। मुख्य अंतर केवल तभी लक्षित होता है जब हम देखते हैं कि एक श्रद्धालु भक्त अपने धन्य के प्रभाव में आकर अपने इष्ट देव में अखिल ऐश्वर्य का आरोप करता है तथा उसे अपने से एक एकांत भिन्न स्तर पर समझने लग जाता है, किंतु सूफी उसे केवल अपनी आत्मीयता के बल पर उपलब्ध करना चाहता है। सूफी अपने ऊपर ऐश्वर्य स्नेह भाव की सतत कामना किया करता है। राम काव्य में प्रदर्शित प्रेम भाव सीमित एवं मर्यादित है। सीता और राम का पूर्व राग भी एक ऐसे अपूर्व नियंत्रण में चित्रित है जो सूफी कवियों की दृष्टि से उतना महत्व नहीं रखता। निर्गुण या संतों का प्रेम भाव किसी अन्य प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से उदाहित किए जाने की अपेक्षा स्वयं उन कवियों की ही बाणियों में प्रस्फुटित हुआ। उसमें विरह की पीर और उन्माद की भी कमी नहीं थी और इस पीर और उन्माद में सूफी प्रभाव की भी कमी नहीं थी, किंतु उनके यहाँ इसे सिद्धि के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। सूफियों के यहाँ प्रेम और पीर को आत्यंतिक महत्व प्रदान किया गया है, यही उनका साध्य भी है। निर्गुणिया संतों का ईश्वरीय प्रेम उनके आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मात्र था, किंतु सूफियों के लिए उसके अतिरिक्त और कुछ भी किसी काम का न था। जायसी के जीवन और काव्य में सर्वत्र प्रणय भावना का ही साम्राज्य है। कवि ने इसके लौकिक और अलौकिक दोनों पक्षों का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत किया है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ना ही तकाह छारी भरी झूठी। पृष्ठ संख्या 70। सत तप कर्म धर्म नेम आदि के मूल में प्रेम ही है, इसलिए विरह और प्रेम की साधना ही सूफी कवि की चरम साधना है। जब लगी विरह न होय तन हिये न उपजई प्रेम, तब लगी हाथ न आव तप कर्म धर्म सतनेम। चित्र रेखा पृष्ठ 70। मध्ययुगीन हिंदी काव्यों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव के प्रदर्शन का भी विषय लाया गया है। इस प्रेम का माध्यम उन गोपियों को ही बनाया गया है जो उनके साथ ही क्रीड़ाओं में भाग लेने वाली उनकी प्रेमिकाएं थी। उन्हें भक्तों के रूप में भी स्वीकार कर लेना उतना स्वाभाविक न था। इसके सिवाय उस प्रेम की भी अविशेषता थी कि उसकी जितनी घनिष्ठता उन स्त्रियों से दिखलाई गई थी उतनी श्री कृष्ण में नहीं, और इसी कारण उसे सूफियों की उन प्रेम पद्धतियों से कुछ पृथक भी रखा जा सकता है, जिसके अनुसार इसके लिए स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को ही अधिक प्रयत्नशील होना चाहिए। सूफियों ने नायक नायिकाओं के प्रेम का वर्णन करते समय उनके सभी वैसे व्यापारों को केवल दृष्टांतों का सा ही महत्व दिया था, और उन्होंने ऐसी चेष्टा भी की थी कि उनके प्रत्यक्षतः लौकिक रूप को किसी अलौकिक ईश्वरीय प्रेम के रूप में घटा दिया जाए। परंतु रीति युग के कवियों ने अपने नायक नायिकाओं को क्रमशः श्री कृष्ण एवं राधा के नाम देते हुए भी उन्हें लौकिक प्रेम का ही माध्यम बना डाला, और कहा भी कि आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई नतु राधिका कन्हाई सुमिरन का बहाना है। सूफी और असूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की रचनाएं भी इसी युग में हुई हैं। रीतिकालीन प्रेमाख्यानक कवियों पर मुख्यतः दो प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। एक तो पद्मावत के वर्णनों से अभिभूत हैं और दूसरे उन्होंने नायिका भेद, नख, शिख, ऋतु वर्णन आदि रीतिकालीन प्रचलित शैलियों का भी अनुकरण किया है। रीतिकालीन सूफी प्रेमाख्यानकों का आरंभ और विकास मूलतः जायसी कृत पद्मावत जैसा ही है। भारत के अनेक समृद्ध भाषाओं में सूफी प्रेमाख्यानों की रचना हुई है। फारसी की मसनवियों से प्रेरणा ग्रहण कर तथा कभी कभी उनके एवं हिंदी प्रेमाख्यानों के अनुवाद रूप में भी बंगला के सूफी कवियों ने 16वीं शताब्दी ईस्वी से ही अपनी सुंदर पांचाली रचनाओं का आरंभ कर दिया था। दौलत काजी की लो चंद्राणी, आलो की पद्मावती, अमीर हमजा की मनोहर मालती, मोहम्मद खान की मृगावती एवं लैला मजनू आदि अत्यंत महत्वपूर्ण सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं। इन कवियों ने भी अपनी रचनाओं के अंतर्गत लगभग उसी प्रेम साधना की व्याख्या की है जैसे अन्य सूफियों ने की थी, और इन्होंने भी उनके कथानकों के घटना विकास तथा प्रसंगों के विविध चित्रणों में प्रायः परंपरागत रचना शैली का ही अनुकरण किया है। पृष्ठ संख्या 71। पंजाबी साहित्य में भी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए हैं। शशि पूनू, हीर रांझा, सोहिनी महिवाल जैसी प्रेम कहानियों के आधार पर पंजाबी मुस्लिम कवियों ने अत्यंत रोचक रचनाओं की सृष्टि की है तथा उन्हें कभी कभी काव्य रूपकों का भी रूप दे दिया है। इनकी लैला मजनू एवं शीरी फरहाद की प्रेम कहानियों में उक्त शैली के उदाहरण और भी अधिक स्पष्ट बनकर दिख पड़ते हैं। उर्दू साहित्य में भी प्रेमाख्यानक काव्य प्रचुर परिमाण में लिखे गए हैं। उर्दू साहित्य का इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट है कि उर्दू के प्रारंभिक कवि कुली कुतुब शाह, अली मोहम्मद एवं काजी मोहम्मद बहरी मूलतः सूफी थे। उन्होंने फारसी की मसनवियों का ही अनुकरण किया है। उर्दू के प्रथम मान्य कवि वली भी एक कट्टर सूफी थे। उनके गुरु थे फारस के प्रसिद्ध सूफी संत शाह सादुल्ला गुलशन। आरजू और आबरू दोनों मोहम्मद गौस और फरीदुद्दीन शकरगंज के वंशज थे। मजहर भी सूफी थे। दर्द नक्शबंदी संप्रदाय के सूफी कवि थे। सौदा और मीर की रचनाओं में सूफी रंग स्पष्ट रूप से दृष्टव्य हैं। हर एक शय में समझ तू जहूर किसका है, चरर में रोशनी शोला में नूर किसका है, सौदा। और इसका उत्तर भी उन्होंने ही दिया है। जलवा हर एक जर्रह में है आफताब का, दर्द ने भी संसार के जर्रे जर्रे में उसी का नूर देखा था, जग में आकर इधर उधर देखा तू ही आया नजर जिधर देखा। सौदा और मीर सूफी मत के पंडित थे। उनकी रचनाओं में आध्यात्मिक गांभीर्य और ईश्वरीय प्रेम स्पष्ट दिखाई देता है। सोज, जौक, गालिब, नजीर, अकबराबादी, अमीर मिनाई, अकबर शाद आदि की कविताओं में सूफी प्रेम की झलक मिलती है। प्रायः इन कवियों ने ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति सूफी तर्ज पर ही की है। वे ईश्वर का ही नूर, प्रकाश, वैभव सर्वत्र व्याप्त देखते हैं। वे मनुष्य को उसका ही प्रतिरूप मानते हैं। जलवा तो हर एक तरह का हर शान में देखा, जो कुछ की सुना तुझमें वो इंसान में देखा। मीर दर्द, ए दर्द कर टिक दिल को आईनाए साफ तू, फिर हर तरफ नजारा हुस्ने जमाल का। दक्षिणी हिंदी उर्दू साहित्य के प्रेमाख्यानों की संख्या भी कम नहीं है। बीजापुर एवं गोलकुंडा की और दक्षिण में लिखी गई गवासी, वजही, तवई, हाशमी आदि की हिंदवी की मसनवियाँ भी सूफी साहित्य में महत्व रखती हैं। पृष्ठ संख्या 72। हिंदवी प्रेमाख्यानों पर फारसी सूफी प्रेमाख्यानों की कथा और शैली दोनों का बड़ा प्रभाव पड़ा है। कवियों ने वर्ण विषय और रचना शैली दोनों दृष्टियों से अनुकरण करते हुए ऐसा प्रयत्न किया है कि मूल प्रकृति की भी सुरक्षा की जा सके। उर्दू साहित्य में इसलिए भी इन प्रेमाख्यानों को महत्व दिया जा सकता है कि इनके कारण प्रेम तत्व का विषय सारे वांग्मय के लिए सामान्य बन गया। दक्षिण की हिंदवी में सर्वप्रथम इसे सूफी मत के प्रचारार्थ रची गई कहानियों में ही देखा जाता था, किंतु पीछे इसे उत्तर भारत में निर्मित होते जाने वाले विशाल उर्दू साहित्य में प्रमुख स्थान मिल गया और इसके कारण उसके श्रृंगारिक रंग में पूरी अभिवृद्धि हो गई। पंडित परशुराम चतुर्वेदी सूफी प्रेमाख्यानक साहित्य हिंदी साहित्य पृष्ठ 296-97 का कथन ठीक है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम इन सूफी प्रेमाख्यानों को उतना अधिक महत्व नहीं दे सकते। इन रचनाओं का आरंभ केवल एक प्रवृत्ति विशेष के परिचायक के रूप में हुआ और पीछे भी यहाँ दूसरे प्रकार की रचनाओं के समानांतर 20वीं शताब्दी तक लगभग एक ही शैली के अनुसार निर्मित होती चली गई। इनका विषय फारसी साहित्य की मसनवियों के आदेशानुसार चुना गया और इनकी रचनाओं का उद्देश्य भी वही रहा गया जो ईरान में रची गई प्रेम कहानियों का रह चुका था। हिंदी के सूफी कवियों की पृथकता इन कवियों से यह है कि इन सभी कुछ के होते हुए भी इन्हें एक पूर्व परंपरागत भारतीय सांचे में ही ढालना अधिक पसंद किया। इन्होंने इनकी रचना के लिए अवधी बोली का प्रयोग किया जो सर्वसाधारण के समाज में लोकप्रिय बन चुकी थी। दोहा चौपाई के क्रम को अपनाया जिसका आदर्श जैन चरित्र काव्यों के लिए बहुत पहले से ही स्वीकृत हो चुका था। उन कथानक रूढ़ियों को स्थान दिया जो प्रचलित लोक कथाओं के भीतर न जाने किस काल से प्रवेश कर चुकी थी और सबसे बढ़कर उस भारतीय वातावरण को भी सुरक्षित रखने की चेष्टा की जो सबके लिए परिचित था। इन रचनाओं के समानांतर यहाँ भक्ति काव्य का निर्माण होता रहा। श्रृंगार रस एवं वीर रस की कविताएं लिखी जाती रहीं तथा बहुत से ऐसे प्रेमाख्यान भी निर्मित होते रहे जिन्हें अन्य उपयुक्त नाम न होने के कारण असूफी प्रेमाख्यान की संज्ञा दी जा सकती है। सूफी प्रेमाख्यानों की यह विशेषता थी कि इनके द्वारा हमें प्रेम तत्व के व्यापक रूप को समझ पाने में अधिक सहायता मिली और इनके कारण धर्म संप्रदाय अथवा वर्गगत भेदभावों को दूर कर एक सर्वमान्य समाज की स्थापना के लिए प्रेरणा भी प्राप्त हुई। अतएव हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों को इसलिए भी विशिष्ट स्थान प्राप्त है कि इनकी रचनाओं द्वारा लोक रंजन के साथ लोक मंगल की भी सिद्धि हुई है। पंडित परशुराम चतुर्वेदी हिंदी साहित्य सूफी प्रेमाख्यानक साहित्य पृष्ठ 296-98 पृष्ठ संख्या 73। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्या प्रेम की पावन धारा और क्या अवधि भाषा का जीवंत रूप, क्या दोहा चौपाई शैली, क्या कथानक रूढ़ियों के सुष्ठु प्रयोग, क्या लोक रंजन और क्या लोक मंगल, सभी दृष्टियों से दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन आदि के हिंदी प्रेमाख्यान अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं। जायसी प्रेमाख्यानक परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इनकी रचनाओं में उपयुक्त गुण पूर्ण मात्रा में अत्यंत सुंदर रूप में विकास को प्राप्त हुए हैं। जायसी, मंझन आदि के प्रेमाख्यानों की एक बहुत बड़ी विशेषता इस बात में भी देखी जा सकती है कि इन प्रेम कहानियों में प्रेम पात्र का स्थान प्रधानतः नारी को ही दिलवाया गया है और उसी के द्वारा भरसक उसी परमात्म तत्व का प्रतिनिधित्व कराने की भी चेष्टा की गई है जो उनके ईश्वरीय प्रेम का लक्ष्य है। नारी ही यहाँ उस नूर का प्रतीक है जो समस्त विश्व का मूल स्रोत है और वही यहाँ उस पूरक का काम करती है जिसके अभाव में सारा मानव जीवन ही सूना है। नारियों के प्रति पुरुषों के प्रेमाकर्षण के अनेक उदाहरण हमें असूफी प्रेमाख्यानों में भी मिलते हैं और यहाँ भी ऐसी प्रेम कथाओं का अभाव नहीं जहाँ पर एक प्रेमी नायक प्रेम पात्री के लिए अपने सर्वस्व का त्याग करके विविध प्रेम व्यापारों में प्रवृत्त होता है। इसके सिवाय सूफी प्रेमाख्यानों में ही हमें इस बात के भी उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं जहाँ स्वयं नारियों ने ही पुरुषों के प्रति प्रेमाशक्ति का भाव सर्वप्रथम प्रदर्शित किया हो। इनमें तो कभी कभी वैसी पत्नियां मिल जाती हैं जो अपने पति के विरह में विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगा करती हैं। अतएव इन दोनों प्रकार के प्रेमाख्यानों की उक्त दृष्टि के अनुसार तुलना करते समय हमारा ध्यान केवल ऐसे उदाहरणों की संख्या मात्र पर ही नहीं जाया करता। इस संबंध में हम इन सूफी कवियों के विशिष्ट आदर्श को महत्व देते हैं जिससे अनुप्राणित होकर इन्होंने इस प्रकार का वर्णन अधिक पसंद किया है। सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया है जिस कारण वह इनके यहाँ किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह जाती, वह उस प्रकार की साधन सामग्री भी नहीं कहला सकती जिस रूप में उसे बौद्ध सहजयानियों ने मुद्रा नाम देकर सहज साधना के लिए अपनाया था। वह उन साधकों की दृष्टि से स्वयं एक सिद्धि बनकर आती है और इस कारण इन प्रेमाख्यानों में उसे प्रायः अलौकिक गुणों से युक्त भी बतलाया जाता है। प्रेम कथा शैली और अन्यापदेश मूलक समासोक्ति शैली दोनों रूपों में प्रेमाख्यानों में नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कहाँ हिंदी प्रेमाख्यानक काव्यों पृष्ठ संख्या 74 में प्रेम में पागल राजकुमारों का समस्त सांसारिक वैभव का परित्याग कर योगी के वेश में निकल पड़ना और कहाँ चारण साहित्य में तलवार के बल से स्त्री को छीनना। प्रेमाख्यानक काव्य में नारीत्व की शोभा है, नारीत्व का माधुर्य है, नारीत्व के प्रति आदर है, परंतु चारण साहित्य में नारी का वह स्थान नहीं, प्रेम के प्रति श्रद्धा का वह भाव नहीं है। प्रारंभ काल में विद्यापति ने भी प्रेम के गीत गाए, परंतु उनके प्रेम में उस स्फूर्ति के दर्शन दुर्लभ हैं जो कि हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में है। प्रेम की वह उच्चता जिसकी अंतिम सीमा प्रेम पंथ है, विद्यापति में नहीं मिलती। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य, पृष्ठ 412। सचमुच विद्यापति की राधा और लक्ष्मण देवी के प्रेम में वह उदात्तता नहीं है जो पद्मावती, नागमती, मधुमालती, मृगावती आदि के प्रेम में है। सूफी प्रेमाख्यानों में नायक एवं नायिका का विवाह संबंध अवश्य करा दिया जाता है। संभवतः इसका कारण यह भी है कि वे प्रायः हिंदू होते हैं। इसी के माध्यम से उनके पास मिलन व संयोग को एक वैध रूप प्रदान कर दिया जाता है जो उनका अंतिम ध्येय है। जैसे कि नागमती एक आदर्श पति प्राणा भारतीय नारी है और पद्मावती एक आदर्श प्रेयसी है। इन दोनों के माध्यम से कवि ने भारतीय नारी के अपने प्रियतम के प्रति अनन्य प्रेम की भावना को अभिव्यक्ति दी है। जायसी के काव्यों में ठेठ लौकिक जीवन के प्रसंगों को भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। असूफी प्रेम गाथाओं में प्रायः ऐसे नायक नायिकाओं की चर्चा की गई है जो या तो पौराणिक परंपरा से संबंध रखते हैं अथवा जिन्हें अवतारी व्यक्तियों में भी गिना जाता है। इस कारण उनके प्रेम व्यापारोपक कथारंभ से एक विचित्र प्रकार की अलौकिकता का रंग चढ़ा हुआ प्रतीत होता है। उनमें जो कुछ भी अपूर्वता दिख पड़ती है उसका कारण प्रेमाशक्ति का विशिष्ट प्रभाव नहीं समझा जाता, प्रत्युत वहाँ इसके लिए प्रायः उनके व्यक्तित्व को ही श्रेय दे दिया जाता है। परंतु सूफी प्रेमाख्यानों के अंतर्गत सर्वत्र केवल इसी बात पर विशेष बल दिया जाता हुआ दिख पड़ेगा कि ऐसी सारी विचित्रताओं की जड़ प्रेम की अपार शक्ति अथवा प्रेम तत्व की महिमा को ही समझना चाहिए, जिसके सामने बड़े से बड़े नरेशों तक को झुककर अपना सर्वस्व अर्पित कर देना पड़ता है। प्रेम के प्रभाव में पूर्ण रूप से आ जाने पर सामाजिक स्तर भेद की भावना भूल जाया करती है। यहाँ तक कि प्रेमी नायक नायिकाओं के लिए मानवेतर प्राणियों तथा कभी कभी प्राकृतिक पदार्थों तक का महत्व उतना ही बड़ा हो जाता है जितना कि अपने समाज के समरूप व समशील सदस्यों का। ये सभी एक समान ही किसी एक सामान्य धरातल पर खींचकर एकत्र कर दिए जाते हैं और फिर प्रसंगवश प्रेम शक्ति के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि भी बन जाते हैं। प्रेमाभिनय के रंगमंच पर पृष्ठ संख्या 75, इन सभी पात्रों को अपने अपने गुणों के अनुसार भाग लेना पड़ता है, जिससे प्रधान पात्रों का प्रेम व्यापार क्रमशः अग्रसर होता चला जाता है और इन सभी के सामूहिक प्रयत्नों का अंतिम परिणाम उनकी कार्यसिद्धि के रूप में प्रकट होता है। पंडित परशुराम चतुर्वेदी, सूफी प्रेमाख्यानक साहित्य, हिंदी साहित्य, पृष्ठ 295। रत्नसेन पद्मावती के प्रेम प्रसंग में यही बात चरितार्थ होती है। प्रेमाभिभूत रत्नसेन राजपाट आदि को त्याग कर जोगी वेश में सिंघल के लिए प्रस्थान कर देता है। रत्नसेन पद्मावती और नागमती के चरित्रों में सामान्य वर्गीय भावनाएं प्रधान हैं। उनके व्यवहारों और क्रियाकलापों में राजन्य वर्गीय भावनाएं हैं। वे सामान्य वर्ग के सदस्य बनकर प्रायः सामान्य जनों की ही तरह व्यवहार करते दिख पड़ते हैं। जोगी बनना, वन, पर्वत, नदी, सागर आदि पार करना, सेंध लगाना, युद्ध के लिए भी प्रस्तुत होना, युद्ध करना, थोड़ी सी भी आशा पर प्राणों को संकट में डाल देना आदि बातें प्रेमी रत्नसेन के व्यक्तित्व में दृष्टव्य हैं। यह अवश्य है कि रत्नसेन के हृदय में प्रेमजन्य एक अदम्य उत्साह सर्वत्र उमड़ित है। उसे प्रेमजन्य दृढ़ निष्ठा का संबल प्राप्त है। अंत में कवि ने उसकी सफलता के लिए ऐसे संयोगों की स्वाभाविक उपस्थापना कर दी है कि आश्चर्य सा होने लगता है। प्रेम के मार्ग में दैवी सहायता स्वरूप देवी देवता, शंकर पार्वती और लक्ष्मी समुद्र भी सहायक बनकर उपस्थित होते हैं। रत्नसेन प्रेम की आँच में तपकर द्वादश वर्णी सोना सा अत्यंत खरा उतरता है। कुतुबन जायसी आदि के प्रेमाख्यानों की एक विशेषता उनके द्वारा लोक पक्ष का सजीव चित्रण किया जाना भी है। लोक गाथाएं, लोक प्रचलित मुहावरे, सूक्तियां, लोकोक्तियां, लोक जीवन के मार्मिक चित्र, लौकिक वातावरण, लोक उत्सव, अंधविश्वास, लोक प्रचलित कथानक रूढ़ियां, लोक गीतियों की पद्धतियां आदि इनके काव्य में बड़े ही सहज और भव्य रूप में चित्रित हैं। यह सत्य है कि अपभ्रंश के परवर्ती काव्यों और जैन चरित काव्यों में इस प्रकार की रूढ़ियों, परंपराओं आदि के स्वाभाविक प्रयोग हुए हैं। संस्कृत के कथा साहित्य में भी इस प्रकार के तत्व दर्शनीय हैं। कथात्मक रूढ़ियों के प्रयोग से संबंधित लोक गाथात्मक शैली वाली परंपरा का जन्म ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ही हो चुका था। यह शैली बौद्ध जातकों के रचना काल तक पर्याप्त विकसित एवं प्रौढ़ हो चुकी थी। पीछे की संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की रचनाओं में भी इस शैली का विकास होता रहा। धीरे धीरे लोक कथाओं की कथानक रूढ़ियों की यह परंपरा लोकप्रिय भी हो गई। सूफी कवियों की इस क्षेत्र में विशेष देन यह है कि इन्होंने काल्पनिक कथानकों के बल पर इस परंपरागत शैली का पूर्ण उत्कर्ष और सुंदर निर्वाह किया है।